संख्या 56 अध्याय 5 प्रेम तत्व। एक, जयदेव विद्यापति और चंडीदास की राधा। सूरदास की कविता का मर्म समझने के लिए उनके पूर्ववर्ती तीन कवियों की रचनाओं से तुलना करेंगे। इस तुलना का लक्ष्य किसी कवि का उत्कर्ष अपकर्ष दिखाना नहीं है, केवल सूरदास का विशेष दृष्टिकोण स्पष्ट करने भर से ही यहाँ मतलब है। जिन तीन कवियों की चर्चा की जाएगी वे हैं जयदेव, विद्यापति और चंडीदास। ये तीनों ही राधा कृष्ण के प्रेम में मत मधुर रस के उपासक थे। तीनों ही परकिया भाव से राधा की वर्णना करते थे। तीनों ने ही जिस भाषा का आश्रय लेकर कविता की है उस भाषा के साहित्य को धन्य कर दिया है। संस्कृत वांग्मय को जयदेव पर अभिमान है, मैथिली को विद्यापति पर नाज है और बंगला साहित्य चंडीदास पर लट्टू है। चैतन्य देव इन तीन कवियों की कविताओं को सुनकर प्रेम गदगद हो उठते थे, इसीलिए इन सुकवियों की कविता के साथ हिंदी के भक्ति रस की तुलना अनुचित नहीं होगी। सबसे पहले इन तीन कवियों की वर्णित राधा को लिया जाए। परंपरा के अनुसार जयदेव राधा की परकिया भाव से उपासना करते थे, पर उनकी पुस्तक गीत गोविंद में इस बात का पोषक प्रमाण नहीं पाया जाता। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेम का अबाध वेग है जिसमें लोक लाज का कोई स्थान नहीं है। बसंत काल में वासंती कुसुम सम सुकुमार अव्ययों से सुसज्जिता होकर प्रेम विह्वला राधिका कृष्ण को पागल की भांति खोजती फिरती है। सखियों से कृष्ण के मिला देने का अनुरोध करते समय वे एक बार कह जरूर जाती है कि मुझे उस कृष्ण से मिला दो जो प्रथम समागम से लज्जिता मुझको शत सत चाटु वाक्यों से प्रसन्न करेंगे। प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु सतेर नुकूलम, पर इस प्रथम समागम की लज्जा में नवोड़ा की लज्जा नहीं है। जयदेव की राधा शुरू में ही कुछ प्रगल्भा सी जान पड़ती है। वह जानती है कि श्री कृष्ण बहुबल्लभ है, स्वच्छंद भाव से अन्यान्य ब्रज सुंदरियों के साथ रमण कर रहे हैं, तथापि उन्हें कृष्ण ही चाहिए। बिना कृष्ण के जीना असंभव है। उस प्रचुर पुरंदर धनुरंजित मेदूर मदिर सुवेशम के बिना विश्व ब्रह्मांड फीका है। भले ही वह शठ हो, भले ही वह गोप कदम्ब नितंबनपति हो, मुख चुंबन लंबित लोभ हो, पर वह मिले जरूर। पर विद्यापति की राधा विलास कलामयी है, किशोरी है, यौवन का इसद उद्भेद हुआ है, रूप लावण्य की दीप्ति से दीप्त है, वयह संधि की अवस्था है, शैशव और यौवन दोनों मिल गए हैं, आंखों ने कान का रास्ता ले लिया है, वचन में चातुरी आ गई है, हंसी की रेखा अधरों पर खेलने लगी है, पृथ्वी पर आसमान का चांद प्रकाशित हो उठा है। पृष्ठ संख्या 57। शैशव यौवन दुहु मिली गेल, श्रवण का पथ दुहु लोचन लेल, वचन का चातुरी लहु लहु हास, धरनी ए चांद करत प्रकाश। अपूर्व है वह रूप माधुरी, छने छने नयन कोन अनुसरई, छने छने वसन धूलि तनु भरई, छने छने दसन छटा छूट हास, छने छने अधर आगे करुवास। यही नहीं, जहाँ जहाँ पद युग धरई, ताही ताही सरोरूह भरई, जहाँ जहाँ छलकत अंग, ताहा ताहा बिजली तरंग। किस विधाता ने रचना की है इस बाला, सुधामुखी के बिही निर्मील बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला, सुंदर वदन चारु अरुलोचन, काजरे रंजित भेला, कानन कमल माझे काल भुजंगिनी, श्रीयुत खंजन खेला। सचमुच विद्यापति की राधा एक अपूर्व सृष्टि है। विधाता ने केवल रूप ही नहीं दिया, इस रूप के अनुरूप ही हृदय है, वैसी लीला वैसा ही विभ्रम। कृष्ण उस रूप माधुरी को निहारते ही रह जाते हैं, आशा नहीं पूजती। आधा आंचल खिसका है, आधे मुंह तक हंसी आकर रुक गई है, आधी आंखों तक आनंद तरंग आकर रुद्ध हो गई है, अर्धोदिभन्न उरोज पर दृष्टि बंध गई है, आधा ही आंचल भरा हुआ है। फिर प्रेम की ज्वाला से प्रेमी क्यों ना दग्ध हो जाए। मोतियों की भांति झलकती हुई दसन पंक्ति पर प्रवाल अधर मिल गए हैं और इस रूप और विभ्रम की अवतार किशोरी मृदु भाषा में बातें कर रही हैं। इसे देखकर श्री कृष्ण की आशा कैसे पूजे। आध आचर खसी, आध वदन हासी, आध ही नयन तरंग, आध ऊरज हेरी, आध आचर भरी तन धरी दगधे अनंग, दसन मुकुता पाती अधर मिलायत, मृदु मृदु कहत ही भाषा, विद्यापति की कह अतै से दुख रह, हेरी हेरी ना पुरल आशा। विद्यापति की यह राधा नवीन प्रेमोल्लास में विह्वल है। पृष्ठ संख्या 58। कृष्ण इस रूप पर मुग्ध है। राधा और कृष्ण के संयोग चित्र को विद्यापति ने बहुत ही सुंदर अंकित किया है। राधिका का विरह भी हृदय स्पर्शी है, पर विरह के बाद का मिलन तो अपूर्व है। राधा का सारा हृदय सौंदर्य उसमें फूट पड़ा है। की कहबरे सखी आनंद और चिर दिने माधव मंदिर मोर, बहुत दिनों पर माधव राधिका के मंदिर में आए हैं, आह उस आनंद को राधिका कैसे बतावे। दारुण वसंत जत दुख देल, हरिमुख हेर इते, सब दुख गेल, पाप सुधाकर जत दुख देल, पिया मुख दर्शन तत सुख भेल, यतहु आछिल मोर हृदयक साध, से सब पूरल हरि प्रसाद, रभस आलिंगने पुलकित भेल, अधरक पाने विरह दूर गेल। महाप्रभु चैतन्य इस पद को पढ़ पढ़ कर व्याकुल हो उठे, व्याकुल होइया प्रभु भूमि ते पड़ीला। चंडीदास की राधा ऐसी नहीं है, उनका हृदय प्रेम से पूर्ण है, श्याम का नाम सुनते ही वे पागल हो जाती हैं। यह मधुर नाम कान में प्रवेश करके उनके मर्म को स्पर्श करता है, नाम जपते जपते वह कृष्ण को पाने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। सई केवा सुनाइल श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मर्मे पाशिल गो, आकुल करिल मोर प्राण, ना जानी के तक मधु श्याम नामे आछे गो, वदन छाड़िते ना ही पारे, जपिते जपिते नाम अवश करिल गो, केमेन पाइब सई तारे। चंडीदास की राधा का प्रेम अनुपम है, स्वर्गीय है। इस राधा में जयदेव की प्रगल्भा विलासवती राधा की छाया भी नहीं है, विद्यापति की रूप मधुरा किशोरी का निशान भी नहीं है, यह विशुद्ध प्रेम की मूर्ति है। चंडीदास कहते हैं कि हमने ऐसी प्रीति न कहीं देखी है न सुनी है, दोनों के प्राण प्राणों से बंधे हैं, विच्छेद की भावना से दोनों ही रो रहे हैं, क्षण भर न देखने से मरण हो जाता है। ए मन प्रीति कभू देखी नाई सुनी, पराने परान बाधा आपनी आपनी। पृष्ठ संख्या 59। दुहु कोडे दुहु कांदे, विच्छेद भाविया, तिल आध ना देखी ले, जाय जे मरिया। राधा ने कृष्ण को संकेत किया है मिलने का, अनेक पुण्य फलों का उदय हुआ, प्रीतम मिलने के लिए संकेत स्थल पर आ गया। इस समय घोर अंधकार था, भयानक मेघ वर्षण हो रहा था, फिर भी न जाने कैसे बंधु मित्र आ ही गया। पर हाय, राधा स्वाधीन तो नहीं, घर में गुरुजन है, दारुण ननद है, प्रिय से कैसे मिलन हो, आंगन में बंधु प्रिय भींग रहा है, देखकर छाती फटी जाती है, पर बाहर कैसे आवे। हाय हाय, संकेत करके प्रिय को कितनी यातनाएं दी है। राधिका बंधु की प्रीति और उसका दुख देख कर व्याकुल होकर कहती है, ऐसा मन में आता है कि सिर पर कलंक की डाली लेकर घर में आग लगा दूं। वह हमारा प्रेमी अपने दुख को सुख समझता है, केवल हमारे दुख से ही दुखी है। सई की आर बलिब तोरे, अनेक पुण्य फले से हेन, बंधुया आसिया मिलल मोरे, ए घोर रजनी मेघ घटा बंधु के मने आयल बाटे, आगिनार माझे बधुया, तितीछे देखिया परान फाटे, घरे गुरुजन ननदी दारुन, विलंबे बाहिर होइनु, आहा मरी मरी संकेत करी, कत ना यातना दिनु, बंधुर पीरीति आरती, देखिया मोर मन हेन करे, कलंकेर डाली माथाय, करिया आनल भेजाई घरे, आपनार दुख सुख करी माने आमार दुखी ते दुखी, चंडीदास कहे कानूर पीरीत, सुनिया जगत सुखी। नाना विघ्न बाधाओं के भीतर से चंडीदास की प्रेमोन्मादिनी राधा चमक पड़ी है, वे विलास की प्रतिमा नहीं है, भक्ति की मूर्ति है। कृष्ण की रूप माधुरी के ध्यान में उनका दिन कट जाता है, मेघों में प्रियतम का रंग देखकर वे व्याकुल हो जाती हैं, कोकिल में प्रिय का स्वर साम्य देखकर वे अपने को भूल जाती हैं, विरह हो या मिलन सर्वत्र उनमें आत्मदान की व्याकुलता दिखलाई देती है। सती वा असती तो माते विदित भालो मंद ना ही जानी, कहे चंडीदास पाप पुण्य सम तोमार चरण खानी। राधिका की एक ही कामना है, एक ही साध है, हे मेरे बंधु और मैं क्या कहूँ, जन्म हो या मरण, जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ हो, तुम्हारे चरणों ने मेरे प्राणों में प्रेम की फांस बांध दी है, सब समर्पण करके एक चित्त होकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। एक रीछे परस पर बर नारी, कंठ भुज भुज धरे दो, सकत नाही निवारी, गौर श्याम कपोल सुललित अधर अमृत सार, परस्पर दो पिय रू प्यारी, रीझी लेत उगार, प्राण इक द्वई देह कीने भक्ति प्रीति प्रकाश, सुर स्वामी स्वामिनी मिली करत रंग विलास। पृष्ठ संख्या 60। बंधु की आर बलिब आमी, मरने जीवने जन्मे जन्मे प्राण नाथ होइयो तुमी, तोमार चरने आमार पराने, बाधिल प्रेमेर फांसी, सब समर्पिया एक मन हैया, निश्चय हैलाम दासी। हे मेरे बंधु तुम मेरे प्राण हो, देह मन आदि कुल शील जाति मान सर्वस्व तुम्हें सौंप दिया है, हे काले तुम अखिलेश्वर हो, तुम योगी के आराध्य धन हो, हम गोप ग्वालिनी तुम्हारा भजन पूजन क्या जाने, प्रीति रस में तन मन डालकर तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दिया है। तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरी गति हो, मेरे मन को और कुछ नहीं भाता। मुझे लोग कलंकनी कहते हैं, इसका मुझे जरा भी दुख नहीं है। तुम्हारे लिए गले में कलंक का हार पहनने में भी सुख है। सती हूँ या असती, तुमसे कुछ नहीं छिपा है। मुझे भले बुरे का ज्ञान नहीं, जानती हूँ केवल तुम्हारा चरण, वहाँ पाप पुण्य समान है। बंधु तुम्ही से अमार प्राण, देह मन आदि तुम्हारो सपेची, कुलशील जाति मान। अखिलेर नाथ तुम्ही है कालिया, योगीर आराध्य धन। गोप गोपालिनी हाम अति हीना, न जानी भजन पूजन। पीरीति रसे ते धाली तनु मन, दिया छी तुमार पाए। तुम्ही मोर पति, तुम्ही मोर गति, मन नाही आन भाए। कलंकी बलिया डाके सब लोके, तहाते नाहिक दुख। तुमार लागिया कलंकेर, हार गलाय परिते सुख। सती वा असती, तोमाते विदित भालो मंद नाही जानी। कहे चंडीदास पाप पुण्य सम तोहारी चरण खानी। केवल राधा ही नहीं, कृष्ण भी प्रेम की मूर्ति हैं। प्रिय के संकेत पर वे आग में कूद सकते हैं, समुद्र में झांप दे सकते हैं। भयानक काल रात्रि और निवीण मेघ वर्षण उस प्रेममयी के सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ इस प्रकार का प्रेम हो, वहाँ मान कैसा। कृष्ण के लिए संसार राधामय है। घर में, वन में, शयन में, भोजन में, जहाँ देखो तहाँ राधा ही राधा। गृह माझे राधा, कानने ते राधा, सकले राधेर देखी। शयने भोजने गमने राधिका, राधिका सदाई मती। राधा के लिए भी श्याम सुंदर शरण आमार, श्याम श्याम सदा सार। श्याम से जीवन, श्याम प्राण मन, श्याम से गलार हार। श्याम धन बल, श्याम जाति कुल, श्याम से सुखेर निधि। श्याम हेन धन मूल अमूल्य, रतन भाग्य मिलाइल विधि। पृष्ठ संख्या 61। सचमुच भाग्य से ऐसा धन मिलता है, ऐसे प्रियतम के ऊपर अभिमान कैसे हो। मान करके राधा अगर बैठ भी गई तो कृष्ण का आकर फिर जाना असह्य हो उठता है। हाय, वह नयनों का तारा हमारी ही गलती से चला गया। मैंने अपना सिर अपने हाथों से काट दिया। हाय हाय, मैंने मान क्यों किया था। हे सखी, भला वह निराश नटवर नागर किधर चला गया। जिस कान्हे के लिए तप और व्रत करती रहती हूँ, वही मेरा अमूल्य धन मेरे पैरों पर लौट रहा था। पर हाय, मैंने पैरों से ठेल दिया। आपन शिर हम आपन हाथे काटिनू, काहे करिनु हेन मान। श्याम सुनागर नटवर शेखर, कहाँ सखी करिल पयान। तप बरत कत करी दिन, यामिनी जो कानू को नहीं पाए। हेन अमूल्य धन मजु, पदे गड़ायल गोपे मुजी ठेलिनु पाए। अपूर्व तन्मयता है इस राधिका में, कृष्ण के विरह में वह योगिनी हो जाती है। हाय, कैसी है यह व्यथा। एकांत में बैठी रहती है, किसी की बात नहीं सुनती, सदा मेघों की ओर टकटकी लगाए रहती है। खाना पीना छोड़ दिया है, एकदम योगिनी हो गई है। आलो राधारे की होलो अंतरे व्यथा, बसिया बिरले था कई एकले ना सुने काहारो कथा। सदाई छयाने चाहे मेघ पाने, ना चले नयनेर तारा। वीरती आहारे रांगा वास परे, येन योगिनीर पारा। विद्यापति और चंडीदास की राधिका की तुलना कवि कुल गुरु रविंद्रनाथ ने की है। विद्यापति की राधिका में प्रेम की अपेक्षा विलास अधिक है, इसमें गंभीरता का अटल स्थैर्य नहीं है, है केवल नवानुराग की उद्भ्रांत लीला और चांचल्य। विद्यापति की राधा नवीना है, नव स्फुटा है, हृदय की सारी नवीन वासनाएं पंख फैलाकर उड़ना चाहती हैं, पर अभी रास्ता नहीं मालूम। एक तुलनीय क्यों राधा नहीं बोलती है, काहे धरनी परी व्याकुल हवे, काहे नयन न खोलती है। कनन बेली सी क्यों मुरझानी, क्यों बन माही अकेली है। कहां गए मनमोहन तजी कई, काहे बिरह देहली है। श्याम नाम स्त्रवननी धुनी सुनी कई, सखियन कंठ लगा वती है। सूर्य श्याम आए यह कही कही, ऐसे मन हर्षावती है। और राधे कत निकुंजनी ठाढ़ी रोवती है, दुई ज्योति मुखार बिंद की चकित चुहु दिसी जोवती। द्रुम शाखा अवलंब बेली गही नख सो भूमि खनोवती। मुकुति कच तन धन की ओट हवे, असुवन चीर निचोवती। सूरदास प्रभु तजी गर्व ते भय प्रेम गति गोवती। पृष्ठ संख्या 62। कौतूहल और अनभिज्ञता वश वह जरा अग्रसर होती है, फिर सिकुड़े आंचल की ओट में अपने एकांत कोमल घोंसले में फिर आती है। कुछ व्याकुल भी है, कुछ आशा निराशा का आंदोलन भी है, किंतु चंडीदास की राधा में जैसे नयन चकोर मोर पिते करे उतरोल, नीमिक है नीमिक ना ही सय है। विद्यापति में उस प्रकार का उतरोल उत्तरल चंचल भाव नहीं है, कुछ कुछ उतावलापन अवश्य है। नवीना का नया प्रेम जिस प्रकार मुग्ध मिश्रित विचित्र कौतुक कुतूहल पूर्ण हुआ करता है, उससे इसमें कुछ भी कमी नहीं है। चंडीदास गंभीर और व्याकुल हैं, विद्यापति नवीन और मधुर। दिनेश बाबू कहते हैं कि विद्यापति वर्णित राधिका कई चित्रपटों की समष्टि है। जयदेव की राधा की भांति इसमें शरीर का भाग अधिक है, हृदय का कम, किंतु विरह में पहुंचकर कवि ने भक्ति और विरह का गान गाया है। उसके प्रेम में बधी हुई विलास कलामयी राधा का चित्रपट सहसा सजीव हो उठा है। विद्यापति की राधिका बड़ी सरला है, बड़ी अनभिज्ञा। चंडीदास की राधिका प्रथम ही उन्मादिनी वेश में आती है, प्रेम के मलय समीर में उनका विकास हुआ है। इसके बाद प्रेम की विह्वलता, कितना कातर अश्रु संपात, कितना दुख निवेदन, कितनी कातरोक्ति, प्रेम के दुख का परिशोध है अभिमान, किंतु वह तो केवल आत्मवंचना है। चंडीदास की राधा में मान करने की क्षमता भी नहीं है। दसो इंद्रिय तो मुग्ध है, मन मान करे कैसे, यह अपूर्व तन्मयता है। धन्य हो चंडीदास, तुम्हारी कविता धन्य है, तुम्हारी राधा धन्य है, तुम्हारे कृष्ण धन्य है, और धन्य है हम लोग जो तुम्हारे साहित्य पीयूष का पान कर सकते हैं। दो, सूरदास की राधा। जयदेव कहते हैं कि यदि हरि स्मरण में मन सरस हो, यदि विलास कला में कौतूहल हो, तो जयदेव की मधुर कोमल कांत पदावली को सुनो। यदि हरि स्मरण सरसम मनो यदि विलास कलासु कौतूहलम, मधुर कोमल कांत पदावली श्रृणु तदा जयदेव सरस्वती। और कोई भी रसिक जिसने इस सरस्वती का रसास्वादन किया है, जयदेव की बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं करेगा। जयदेव की राधा विलास कला के कौतूहल को निसंदेह दूर कर सकती है। विद्यापति की नवीन प्रेम भरी कविता भी आपके इस कौतूहल को दूर कर सकती है। उसके गजगमन से, उसके अपांग भीषण से, उसके इंद्र जाली पुष्प बाणों से, उसके चंपे के फूलों की रस्सी जैसे बाहुपास से, उसके सुमधुर वैन से, उसके शरद चंद्राभ मुखमंडल से जगतपति का मनोमयूर नाच उठता है। उस अकाम की कामना पूरी हो जाती है। गीली कामनी गजहु गामनी बिहसी पलटी निहारी, इंद्र जालक कुसुम सायक कुहक भेली वर नारी। पृष्ठ संख्या 63। जोरी भुज जुग मोरी बेढल ततही वयन सुछंद, दाम चंपके काम पूजल जैसे शारद चंद। पर चंडीदास की राधा में ये सब बातें बहुत कम है। उस मक्खन की पुतली को गलते देर नहीं, कान ही उसके प्राण है, कान ही जाति, कान ही जीवन, कान ही उसकी दोनों आँखों की तारा है। वह प्राण से भी अधिक हृदय की पुतली है, जिसको खो जाने की आशंका उन्हें क्षण क्षण पर व्याकुल कर देती है। कानों से जीवन जाति प्राण धन ए दुटी आखिर तारा, परान अधिक हियार पुतली नीमेखे नीमेखे हारा। विद्यापति की राधा इस दुदी भन्न यौवना है, जयदेव की पूर्ण विलासवती प्रगल्भा और चंडीदास की राधा उन्मादमयी मोम की पुतली, ते तीनों ही धन्य है, और भी धन्य है। वह बाल किशोरी, वह लाल की बतरस लालच से मुरली लुका धरने वाली, वह आँख मिचोली में बड़री अखियान के कारण बदनाम, बरसाने की छबिली वृष्ण भानु की लली, वह बालिका है, वह किशोरी है, वह ग्वालिनी है, वह ब्रजरानी है। शोभा उस पर 100 जान से निसार है, श्रृंगार उसका गुलाम है, तैरलोक के नाथ उसकी आँखों की कोर के मोहताज है। फिर भी वह तदगत प्राणा है, विरह में वह करुणा की मूर्ति है, मिलन में लीला का अवतार। प्रेमी के सामने वह सरल है, गाती है नाचती है, हिंडोले पर झूलती है, अपने को एकदम भूल जाती है। प्रेम की गंभीरता आनंद कल्लोल से भर जाती है, पर विरह में वह गंभीर है और गोपियों की तरह उसमें उतावलापन नहीं रहता। वह सच्ची प्रेमिका है सूरदास की राधा, तीन लोक से न्यारी सृष्टि है, अपूर्व अद्भुत विचित्र, सुनिए उसकी सौंदर्य कथा। सुनी मोहन तेरी प्राण पिया को वर्णौ नंद कुमार, जो तुम आदि अंत मेरो गुण मानहु यह उपकार। चंद्रमुखी भौहे कलंक बिच चंदन तिलक लीलार, मनुबेनी भुवंगिनी परसत स्त्रवत सुधा की धार। नैन मीन सरवर आनन में चंचल करत बिहार, मानो कर्ण फूल चारा कौ रबकत बारंबार। बेसरी बनी सुभग नासा पर मुक्ता परम सुधार, मनु तील फूल अधर बिंबाधर दुहु बिच बूंद तुसार। सूठी सुठान ठोड़ी अति सुंदर सुंदरता को सार, चितवत चुवत सुधारस मानो रही गई बूंद मंझार। कंठ सिरी उर पदिक बिराजत गज मोतिन के हार, दाहिना वर्त देत मनु ध्रुव को मिली नक्षत्र की मार। कुछ युग कुंभ सुंडी रोमावली नाभि सुहृद आकार, जनी जल सोखी लयो सो सबिता जोबन गज मतवार, रत्न जटित गजरा बाजु बंद शोभा भुजनी अपार। पृष्ठ संख्या 64। फूंदा सुभग फूल फूले मनु मदन विटप की डार, छीन लंक कटी किंकनी को धुनी बाजत अति झनकार, मौर बांधी बैठे ओ जनु दुलह मनमथ आसन तार, जुगल जंग जे हरी जराव की राजती परम उदार, राजहंस गति चलती कृसोदरी अति नितंब के भार, छिटकी रहियो लहंगा रंग तन सुख सारी तन सुकुमार, सुर सु अंग सुगंध समूहनी भ्रमर करती गुंजार। सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं है, श्री कृष्ण के साथ उसका केवल युवा काल का संबंध नहीं है, वे परकिया नायिका भी नहीं है। बहुत छोटी उम्र से वे कृष्ण के साथ गुड़ियों के खेल खेल चुकी है, घंटों अपने घर न जाकर नंद बाबा के घर में आंख मिचौली खेल कर समय काट चुकी है। उस बारी वह में ही एक गाढ़ प्रेम का आभास पाया जाता है, जो खेल में हंसी में मान में अपमान में रोदन में विचित्र भाव से विकसित हो उठा है। पहले ही दिन जब बालक कृष्ण खेलने के लिए ब्रज की गलियों में निकलते हैं, इस अल्प वयस्क का सखी को देखकर रीझ जाते हैं, नैन नैनों से मिल जाते हैं, ठगौड़ी पर जाती है, वह स्वर्गीय प्रेम है, वासना से रहित निर्मल विशुद्ध। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, कटी कछनी पीताम्बर ओढ़े, हाथ लिए भौरा चकडोरी, मोर मुकुट कुंडल स्त्रवननन बर दसन दमक दामिनी छवि थोरी, गए श्याम रवि तनया के तट अंग लसती चंदन की खोरी, औचक ही देखी तह राधा नयन विशाल भाल दिए रोरी, नील बसन फरिया कटी पहिरे बेनी पीठ रूलती झक झोरी, संग लरी कनी चली इत आवती दीन थोरी अति छवि तन गोरी, सूर्य श्याम देखत ही रीझे नैन नैन मिली परी ठगोरी। यह पहला दर्शन था, श्याम ने श्यामा को देखा, कैसा सुंदर था वह रूप, गोरा शरीर नीला वस्त्र और पीठ पर वीणी, अल्प वयस आंखें विशाल और माथे पर रोरी, श्याम की आंखें श्यामा की आंखों में अटक गई। यह उलझन युवा अवस्था की ही नहीं थी, जिसमें वाक्य रुद्ध हो जाते हैं, यह बाल्यकाल की स्वर्गीय उलझन थी, जिसमें न झिझक है न संकोच। श्याम ने कहा, क्यों जी तुम हमारे साथ खेलने क्यों नहीं चलती, हम तुम्हारा कुछ चुरा लेंगे क्या, तुम्हरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, और फिर प्रथम स्नेह दुहन मन जान्यो, सैन सैन कीनी सब बातें गुप्त प्रीति सिसुता प्रकटान्यो। श्याम ने कहा, सखी हमारे घर आकर मुझे खेलने को बुला लेना, तुम्हें वश भानु बाबा की सौगंध, सुबह शाम एक बार जरूर आना, तुम्ही सौह वृषभानु बाबा की प्रातः सांझ एक फेर, हाँ जी तुम बड़ी सीधी जान पड़ती हो। पृष्ठ संख्या 65। इसलिए तुम्हारे साथ रहने को जी चाहता है, सुधी निपट देखियत तुमको तातई करियत साथ, मगर ए सूरदास इनको निपट सीधा न जानना, ये केवल बनवारी नहीं है, श्याम और श्यामा दोनों ही नागर और नागरी हैं, सुनते रहो इनकी मिलन कथा। सूर श्याम नागर उत राधा नागरी दो मिली गाथ, फिर धीरे धीरे यह प्रेम गाढ़ से गाढ़तर होता जाता है, आंखों को विश्राम नहीं, सैन पर सैन चलते हैं, तिल मात्र का वियोग भी असह्य हो उठता है। श्याम के प्रथम इशारे के मादक दर्शन से राधिका के कनक कपोल व्रीड़ा के आवेग से रक्तिम हो उठते हैं, यह प्रथम संकोच का उदय हुआ है, इसके पहले बहुत से गुड़ियों के खेल खेले जा चुके हैं, परंतु यह रक्तिमा तो आज की ही है, कितनी स्वर्गीय है यह। कनक बदन सुधार सुंदरी सकुची मुख मुस्काई, श्याम प्यारी नयन राचे अति विशाल चलाई, सूर प्रभु के वचन सुनी सुनी रही कुवरी लजाई, घर में अब अच्छा नहीं लगता चित्त सब समय गोष्ठ में ही आबद्ध है, खान पान भूल गया है, कभी हंसती है कभी रोती है, माँ बाप का भय भी लगा है, अब दोहनी लेकर गोष्ठ में जाने की बड़ी उत्कंठा है। नागरी मन गई अरुझाई अति विरह तनु भई व्याकुल, घर न नेकु सुहाई, श्याम सुंदर मदन मोहन मोहिनी सी लाई, चित चंचल कुवरी राधा खान पान भुलाई, कबहू बिलपति कबहू विहसती सकुची रहती जलजाई। मातु पितु को त्रास मानती मन बिना भई बाई। जननी सो दोहनी मांगती बेगी दैरी माई। सूर्य प्रभु को खरीक मिले हूँ गए मोही बुलाई। इधर श्याम भी दोहनी के लिए व्याकुल हैं। श्याम और श्यामा दोनों ही खरीक में दोहनी के लिए पहुंच गए। नंद ने कहा दोनों यहीं खेलो दूर न जाना। फिर क्या था जो रोगी को भावे सो वैदा बतावे। राधिका ने कहा सुनी तुमने नंद बाबा की बात। खबरदार मुझे छोड़ के जाना मत। जरा भी हटे की पकड़ लाऊंगी। अच्छा हुआ जो हमको सौंप गए। अब तुम्हें मैं छोड़ने की नहीं तुम्हारी बाह पकड़ के तुम्हारी रखवाली करूंगी नहीं तो अम्मा खींचेंगी। श्याम ने कहा राधा मेरी बाह छोड़ दे यह बाल केली है। दोनों को पता नहीं कि वे किस ओर बहे जा रहे हैं परंतु सूरदास से यह बात छिपी नहीं है कि यह भी प्रेम की घाते हैं। प्रेम जो भविष्य में सांद्र माधुर्य में परिणत होगा। नंद बाबा की बात सुनो हरी मोही छाड़ी कई कबहू जाहुगे लिया तुमको धरी। भली भई तुम्हें सौंपी गए मोही जान न दे हूँ तुमको। बाह तुम्हारी नेक न छाड़ी हूँ महरी खीजी है हमको। मेरी बाही छाड़ी दई राधा करना ऊपर फट बाते। सूर्य श्याम नागर नागरी सो करत प्रेम की घाते। पृष्ठ संख्या 66। धन्य हो सूरदास तुम्हारी भविष्यवाणी सच निकली। उस मेघ मेदुर संध्या को नंद ने राधिका से कहा बेटी श्याम को घर ले जा। दोनों ने सघन कुंज का रास्ता लिया। गगन गहराई जुटी घटा कारी पौन झकझोर चपला चमकी चहु ओर सुवन तन चित्तई नंद डरत भारी। कहियो वृष भानु की कुवरी सो बोली कई राधिका कान घर लिए जारी। दो घर जाहु संग गगन भयो श्याम रंग कुंवर कर गहयो वृष भानु बारी। गए बन घन और नवल नंद किशोर नवल राधा नए कुंज भारी। अंग पुलकित भय मदन तिन तन जय सूर्य प्रभु श्याम श्याम बिहारी। इस प्रकार नवल गोपाल नवेली राधा नए प्रेम रस पागे और इस नए प्रेम की धारा सार वर्षा से सूर सागर उद्वेलित हो उठा है। कबहुक बैठी अंश भुज धरी गई पीक कपोलनी दागे अतिरस राशि लुटावट लूटत लालच लगे सभागे। अपनी भुजा श्याम भुज उपरी श्याम भुजा अपने उर धरिया यो लपटाई रहे उर जो मरकत मणि कंचन में जरिया। चूमत अंग परस्पर जनु जुग चंद करत हित बार रसन दसन भरी चापी चतुर अति करत रंग विस्तार। यही सूरदास विद्यापति और चंडीदास की समान भूमि पर आते हैं। विद्यापति की राधा और चंडीदास की राधा इसके पहले नहीं दिखलाई देती। बालकेली की वर्णना में सूरदास अकेले हैं यूनिक पर इस समान भूमि पर भी सूरदास की अपनी विशेषता है। राधा और कृष्ण का मिलन एकदम अनूठा है। इसमें चिंता नहीं आशंका नहीं भीति नहीं। चंडीदास की राधा मिलन में भी विरह के त्रास से भीत हो उठती है। पद पद पर विरह का भय कलंक का भय जुदाई की जलन यही भय बराबर मन में लगा रहता है कि न जाने कान का प्रेम कब तिल भर के लिए भी छूट जाएगा। एई भय उठे मने एई भय उठे न जानी कानूर प्रेम तिले जानी छूटे। प्रेमी को देखकर अभी अभी हृदय जुड़ा जाता है पर दूसरे ही क्षण कांप उठता है। एक तुलनीय मेघेर मेदुरंबरम वन भुवः श्यामा समाल द्रुमैर नक्तम भिरुरयम त्वमेव तदिमम राधे गृहम प्राप्य थम नंद निदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुंज द्रुमम राधा माधयोर जयंती यमुना कुले रह केलयः जयदेव। पृष्ठ संख्या 67। उसकी अमंगल की आशंका से हे सखियो श्याम अंग के शीतल पवन स्पर्श से मेरा हृदय शीतल हो गया। तुम लोग यमुना जल में स्नान करो ताकि उस पुण्य फल से मेरे प्यारे का सारा अमंगल दूर हो जाए। सई जुड़ाइल मोर हिया श्याम अंगेर शीतल पवन ताहार परश पाइया। तोरा सखीगण करह सिनान आनी यमुना नीरे आमार बंधुरियत अमंगल सकल याऊ दूरे। उधर विद्यापति की राधा प्रिय मिलन का वर्णन करते करते आनंद गदगद हो उठती है। वह पिया की पी रीति कह भी नहीं सकती। अफसोस ब्रह्मा ने उन्हें लाखों मुख नहीं दिए। कैसे है वह प्रीति। पिया ने मुझे हाथ पकड़कर गोद में बैठाया और मेरे शरीर में सुगंध और चंदन का लेप किया। अपने हृदय की मालती माला उतार कर यत्न पूर्वक मेरे कंठ में पहना दी। अनुपम रूप से मेरे लंबे केश केश बांध दिए, उसमें चंपे के फूलों की रस्सी लपेट दी, मधुर मधुर दृष्टि से मुंह निहारने लगा, आनंद वाष्प से उसकी आंखें भर आईं। विद्यापति कहते हैं कि यह प्रसंग चलाते समय राधिका रात के रस रंग में भूल गई। पियाक पीरी थी हम कहिक नहीं पार, लाख बयान विही ना देह हमार, करे धरी पिया मोर बैठावल कोर, सुगंधी चंदने तनु लेपक मोर, आपन मालती माला हिया से उतारी, कंठे पहिरावल यतने हमारी, हुयल कबरी बांधई अनुपाम, ताहे बेढ़ेयल चंपक दाम, मधुर मधुर दी थी हेरे बयान, आनंद चले परिपूरल नयान, भनय विद्यापति इह प्रसंग, धनी भूलल कह इते रजनी का रंग। मगर समग्र सूर साहित्य में एक स्थान पर भी शायद राधिका का इस प्रकार उच्छ्वसित रूप नहीं मिलेगा। प्रेम की उस आकंठ पूर्ण कलसी में कभी भी छलक नहीं आई। क्षण भर के लिए विद्यापति की समान भूमि पर आकर सूरदास फिर अपने स्वाभाविक मार्ग पर आ जाते हैं। वही दिन भर कृष्ण के साथ हास विलास, मुरली की चोरी, माखन की बटाई और आंखों की लड़ाई, यशोदा राधिका का वेश संवार देती है, कृष्ण के साथ खेलने की आज्ञा देती है, युगल मूर्ति का सारा दिन हंसी खुशी में कट जाता है, न अमंगल की आशंका है न प्रेम का उच्छ्वास, यह सृष्टि अद्भुत है। राधिका देर से घर पहुंचती है, माता को नए प्रेम का संदेह होता है, माँ डांटती है। पृष्ठ संख्या 68, काहे को तुम जह तह डोलती, हमको अति ही लजावती, अपने कुल की खबरी करो धौं संकुच नहीं जी आवती। मगर प्रेम गाढ़ से गाढ़तर होता जाता है, पनघट पर ठठोली होती है, रास्ते में छेड़छाड़, पर कहीं भी यह प्रेम उच्छ्वास के रूप में नहीं फूट पड़ता। मानो इन सारी लीलाओं में कोई विचित्रता नहीं, मानो ये इतनी स्वाभाविक बातें हैं कि कभी भी किसी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना किसी हिचकिचाहट के जोर देकर कहा जा सकता है कि इस प्रकार का अपने आप में भरपूर प्रेम सूरदास की ही लेखनी की करामात है। प्रेम के सिवा लाख गानों का समुद्र एक बार फिर उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मर्याद नहीं हुआ, चांद के संयोग में वह उफन उठता है पर उद्वेलित नहीं होता, विरह में वह तरंग लोल हो जाता है पर मर्यादा नहीं त्यागता। विरह के दो चार पदों को देकर हम इस बात की यथार्थता की जांच करेंगे। सूर सागर पर एक सरसरी निगाह दौड़ाने पर भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि सूरदास की राधिका न तो विलासनी है न ग्वालिन, इन दोनों रूपों का एक विचित्र सामंजस्य ही मानो सूरदास का अभिष्ट प्रतिपाद्य है। राधा जब कृष्ण के साथ खेलती है, हंसती है, रोती है, छेड़छाड़ करती है, तो एक शुद्ध प्रेममयी के रूप में दिखलाई देती है। यद्यपि सूरदास इस बाल लीला के भावी रूप की ओर इशारा कर देने में कभी नहीं चूकते, कृष्ण माता से कहते हैं, माँ राधिका बड़ी चोर है, हमारी मुरली चुरा ले जाएगी, इसे संभाल के रख। यशोदा कह उठती हैं, मेरे लाल के प्राण खिलौना ऐसो को ले जेहेरी। इस तरह राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ भारी दुष्ट है वह कान्ह, सारा दही ढरका देता है, मैं उस रास्ते नहीं जाऊंगी। माँ बोलती है, क्या हुआ, दही की क्या कमी है, तू उदास न हो। पर सूरदास दोनों ही जगह अपने पाठकों को आगाह कर देते हैं कि इनकी बात सुनते रहो, ये दोनों ही नागर हैं। राधा मान करती है, हजार मनाने पर नहीं मानती, दूतियाँ थक जाती हैं, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, पर यह मान उनके मान का नहीं रहता। चंडीदास की राधिका इसके बहुत पहले पानी पानी हो गई होती, कह उठती, छी छी, इस दारुण मान के लिए मैंने अपने प्यार को खो दिया था, श्याम सुंदर के मनोहर रूप को देख कर जी में जी आया, छी छी, दारुण माने रे लागिया बंधु ने हाराए छिलाम, श्याम सुंदर रूप मनोहर देखिया परान पेलाम। विद्यापति की राधा कृष्ण को देखते ही गदगद हो उठी, दुहु मुह हेर ईत दुहु भेल धन्य। परंतु सूरदास की राधा मानिनी है, दारुण मानिनी। इस मानिनी ने ज्यों ही सुना कि कृष्ण दरवाजे पर से लौटे जा रहे हैं, बस सारा मान भंग हो गया। परंतु मान भंग होते ही दौड़ के मिल नहीं गई, प्रिय को प्रसन्न करना ही है तो जरा अच्छी तरह सचकर क्यों ना चला जाए, इतनी देर तक उन्होंने प्रतीक्षा की है, जरा और कर लेंगे। राधिका श्रृंगार करने लगती है और सखी से संदेशा कह देती है। पृष्ठ संख्या 69, ताही कहियो सुख दई चली हरि को हौ आवती हौ पाछे। और फिर वह सिंगार किया जिसका नाम रत्न जटित गजरा बाजुबंद शोभा भुजन अपार फूंदा सुभग फूल फुले मनो मदन विटप की डार छिटकी रहियो लहंगा रंग ता संग तन सुखवत सुकुमार सूर सुअंग सुगंध समूहनी भ्रमर करत गुंजार। मगर इस मान की सारी दृढ़ता इस विश्वास पर निर्भर है कि कृष्ण उनके और उन्हीं के हैं। यही माननी कृष्ण के मथुरा गमन के बाद आज रैनी नहीं नींद परी जागत गनत गगन के तारे रसना रटत गोविंद हरि। वह चितवन वह रथ की बैठन जब अक्रूर की बाह गही चितवत रही ठगी सी ठाढ़ी कहीं न सकती कछु काम दही। इतनो मन व्याकुल भयो सजनी आरज पंथहु ते बिडरी सूरदास प्रभु जहां सिधारे की तिक दूर मथुरा नगरी। सूरदास की राधा का हृदय सौंदर्य देखना हो तो उद्धव का प्रसंग देखिए। गोपियों ने क्या क्या नहीं कहा, कृष्ण को भी कहा उद्धव को भी कहा, बेचारे भौरे की तो दुर्गति ही कर डाली। पर हाय राधिका ने क्या कहा, उस बरसाने की चोरटी ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। उद्धव के रथ को देखकर गोपियों ने समझा था श्याम सुंदर आ गए। एक दौड़ी दौड़ी राधिका के पास भी पहुंच, राधा ने सुना पर दौड़ी नहीं गई, चुप सी रह गई। उद्धव जब लौट कर मथुरा गए तो उन्होंने समाचार कहते समय यह कह दिया कि मेरा रथ देखकर गोपियां दौड़ी, सबके आगे थी राधा। एक सखी उनमें जो राधा जब हौ इह ते गयो तब ब्रजराज सहित गोपी गण आगे हवे जो लयो। पर यह उनकी भूल थी, बाद में उन्होंने कहा कि राधिका दरवाजे पर खड़ी थी, जो माननी अपने मान में इतनी दृढ़ रही वह दो कदम भी आगे न बढ़ सकी। हाय चलत चरण गही रही गई गिरी स्वेद सलिल भय भीनी छूटी बट भुज फूटी बलिया टूटी लर फटी कंचुक झीनी। और जब संदेशा कहन सुंदरी गवन मो तन कीन खसी मुद्रा चरण अरुझी गिरी भुवि बलहीन। कंठ बचन न बोली आवई हृदय परिहस भीन नैन जल भरी रोई दीनो ग्रसित आपद दीन। उठी बहुरी संभारी भट ज्यों परम साहस कीन सूर प्रभु कल्याण ऐसे जीवही आसाली। पृष्ठ संख्या 70। यह है वह प्रेम सागर जिसमें कभी चंचलता नहीं आई, जिन आँखों को देख कर कितनी ही बार नट नागर मूर्छित हो पड़े थे। कहूँ मुरली कहूँ लकुट परियो अरु कहूँ पट कहूँ चंद्रिका गौर। जिस दशा को देखकर चकित सूर ने पूछा था राधे तेरे नैन किंधौरी बान, उन्हीं आँखों को उद्धव ने किस रूप में देखा। देखी मैं लोचन चुवत अचेत उमंगी चले दो नैन विशाल नैन घट घटत न एक घरी नैननी होड़ बदी बरसा सो। और तुम्हारे बिरह ब्रजनाथ राधिका नैनिन नदी बढ़ी लीने जात निमेश कूद दो एते मान चढ़ी। परंतु इस व्याकुल विरहणी का कोई भी संदेशा उद्धव न कह सके। प्रियतम के मित्र से आखिर राधा क्या कहती, यह बात नहीं है कि राधिका के पास कोई संदेशा नहीं था। उद्धव की जगह अगर अन्य कोई पथिक होता तो वे संदेशा दे सकती थी। सूरती करी हवा की रोई दियो पंथी एक देखी मार्ग में राधा बोली लियो। परंतु संदेशा कहते समय गदगद कंठ हियो भारी आयो वचन कहियो न दियो। यह पंथी उद्धव नहीं था, संभाल कर राधा ने जो संदेशा दिया उससे अपि द्रावा रोदित्यपि गलति व्रजस्य हृदयम्। क्या था वह संदेशा, यही कि इतनी बिनती सुनहु हमारी बारक हूँ पतिया लिखी दीजे चरण कमल दर्शन तव नौ का करुणा सिंधु जगत जस लीजे। यह केली कलावती का संदेशा नहीं है, यह विलासिनी का अनुरोध नहीं है, यह एकांत आश्रित भक्ति की करुण पुकार है। हाय इस संदेशे में कितनी करुणा है कितनी विवशता है। सूरदास प्रभु आस मिलन की एक बार आवन ब्रज की जाई। पर उद्धव तो प्रिय के अपने मित्र थे। कालिदास ने कहा है कि स्वजन के सामने दुख दरवाजा तोड़ के निकल पड़ता है। स्वजनस्य ही दुखम अग्रतो विवृत द्वारमिव उपजायते। फिर ऐसी अवस्था में संदेश क्या, गोपियों ने कृष्ण को दोष देना शुरू किया। प्रेम की साक्षात मूर्ति वह ब्रज सुंदरी बोल उठी सखीरी हरि ही दोष जानी देहू ताते मन इतनो दुख पावत मेरोई कपट सनेहू। पृष्ठ संख्या 71। क्योंकि तदपि सखी ब्रजनाथ बिना उर फाटी न हो बड़ बेहू। इस चित्र का और भी अधिक स्पष्टीकरण कुरुक्षेत्र के मिलन में हुआ है। सखी ने राधिका को श्री कृष्ण के आने का समाचार सुनाया, सुनकर राधिका की आंखों में आंसू भर आए। श्याम यद्यपि निकट आ गए हैं फिर भी कौन जाने उनसे कब मिलन होगा। राधा नैन नीर भरी आए कब धौ मिले श्याम सुंदर सखी यद्यपि निकट है आए। श्याम सुंदर निकट तो आ गए हैं पर मिलन तो उनकी इच्छा पर अवलंबित है। कौन जाने उन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता ही न हो, उन्होंने अब तक छोड़ दिया था। राधिका ने उनसे फरियाद नहीं की तो आज भी नहीं करेगी। राधिका का प्रेम उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए है, बोझ होने के लिए नहीं। यदि उन्हें जरूरत होगी तो वे खुद आएंगे। पर राधिका अपने एकांत रक्षित प्रेम निधि को सहज ही नहीं खोल देगी। वे आवे अगर उनमें कोई अपूर्णता रह गई हो, वे ना आवे अगर वे अपने को पूर्ण समझते हो। राधिका का तो एक ही काम है, प्रेम करना, विरह की आग में जलना और मिलन की आशा में जीना। वे स्वयं नहीं जाएगी, राधा आगे नहीं गई। महाराज श्री कृष्ण चंद्र आज अपनी पट्ट महिषी रुक्मणी के साथ पधारे हैं। ये गोपाल नहीं, नटवर नहीं, बनमाली नहीं, मुरलीधर भी नहीं है। पौर युवती का कर्तव्य है आचार लाजा से महाराज की मंगल अभ्यर्थना करना। राधा भी युवतियों में खड़ी हो गई। रुक्मणी श्री कृष्ण से पूछती हैं, पिया इनमें को विषभानु किशोरी, नैकु हमें दिख रावहु अपनी बालापन की जोरी। परम चतुर जिन की नहीं मोहन अल्प बेस ही थोरी, जाके गुण गनी गूथती माल कबहू उड़ते नहीं छोरी। इस पर श्री कृष्ण ने युवती वृंद में खड़ी राधिका को दिखाया, देखो युवती वृंद में ठाड़ी नील बसन तनु गोरी, सूरदास मेरो मन वाकी चितवन देखी हरियोरी। सचमुच वह चितवन ऐसी ही रही होगी। दो कदम आगे अपने एकांत जीवन का परम आराध्य खड़ा था, पर उसके मिलने की हौस मन में ही दुबक कर रह गई थी। वही कृष्ण है जिनके साथ गुड़ियों के खेल खेले थे, पनगट पर छेड़खानियां हुई थी, दान देने लेने के बतरस में आंखों की तानातानी हुआ करती थी, मुरली के लिए हाथापाई हो जाया करती थी, यमुना का तट और कदम्ब कुंज रसमय हो उठते थे, वृंदावन रास के उमंग में गह गहा उठता था। जो सबसे निकट थे वही आज कितनी दूर हैं। आज कृष्ण महाराज हैं, उनके साथ में लाव लश्कर का अंत नहीं, हाथी घोड़ों की भीड़ लगी है, बड़ी बड़ी रानियां उनका मनोरंजन कर रही हैं। जो सहज थे आज वे दुर्गम हैं। प्रेमिका की करुण चितवन को श्री कृष्ण जैसा प्रेमी ही समझ सकता है, और समझ सकता था सूर जैसा सम्यक दृष्ट संपन्न पारखी। अंत में महाराज श्री कृष्ण रथ से उतरे, राधिका के भाग्य जगे, बहुत दिनों का खोया रत्न मिला, मगर बाधा नहीं गई। पृष्ठ संख्या 72। सूर देखी वा प्रभुता उनकी कही नहीं आवई बात, श्री कृष्ण ने इसे समझा, रुक्मणी ने इसका अनुभव किया। पति परायण पट्ट महिषी राधिका की बगल में बैठ गई, रानी की तरह नहीं बहन की तरह। फिर अपने घर लिवा गई, नाना भाती का आतिथ्य किया। अब सूरदास के प्रभु उस महल में पधारे जहाँ दोनों ठकुरानियां बैठी थी। रुक्मिणी राधा ऐसे भेंटी जैसे बहुत दिनन की बिछड़ी एक बाप की बेटी। एक स्वभाव एक बै दो दो हरि कौ प्यारी, एक प्राण मन एक दुहन को तन करी दीसत न्यारी। निज मंदिर लई गई रुक्मिणी पहुनाई विधि ठानी, सूरदास प्रभु तह पग धारी जह दो ठकुरानी। और फिर राधा माधव भेंट भई, दोनों एक दूसरे की चिंता में तन्मय हो गए, तद्रूप हो गए, जैसे भ्रमरी की अनवरत चिंता करने वाला कीट भी भ्रमरी हो जाता है। राधा माधव बन गई और माधव राधा, माधव राधा के रंग में रंग गए, राधा माधव के, और हंसकर माधव बोले, हम में तुम में अंतर क्या है। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा कीट भृंग गति हमें जू गई। माधव राधा के रंग रांचे, राधा माधव रंग रई, माधव राधा प्रीति निरंतर रसना करी सो कही न गई। बिसही कहियो हम तुम नहीं अंतर, यह कही के उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित नई नई। भगवान तो बोले, पर हाय राधा ने क्या कहा। बरसाने की उस मुखर बाला के मुख में शब्द नहीं थे, प्रेतम के जाने पर पछता कर रह गई। एक तुलनीय शतेक वरस परे बधुआ मिलल धरे, राधिकार अंतरे उल्लास हारा निधि पाइनु बलि, लैया हृदय तुली राखिते ना सहे अवकाश। मिलल दुहु तनु की वा अपरूप, चकोर पाइल चांद पातिया पीरीति फांद, कमलिनी पावल मधु रस भरे दुहु तनु, थर थर कांपई झापई दुहु दोहा आवेशे भोर, दुहुक मिलने आजी निभायल अनल पावक विरहक ओर। चंडीदास। पृष्ठ संख्या 73। करत कछु नाही आज बनी, हरि आए हौं रही ठगी सी जैसे चित्र धनी। आसन हरषि हृदय नहीं दिनहो कमल कुटी अपनी, न्यो छावर उर अरघ न नैननी जल धारा जू बनी। कंचुकी तय कुछ कलश प्रकटी हमें, टूटी न तरक तनी अब उपजी अति लाज मन ही मन। समझत निज करनी मुख देखत न्यारी सी रही गई बिनु बुधि मति सजनी, तदपि सुर मेरी यह जड़ता मंगल माही गनी। यह है सूरदास की राधा। भारतवर्ष के किसी कवि ने राधा का वर्णन इस पूर्णता के साथ नहीं किया। बाल प्रेम की चंचल लीलाओं की इस प्रकार की परिणति सचमुच आश्चर्यजनक है। संयोग की रस वर्षा के समय जिस तरह प्रेम की नदी बह रही थी, वियोग की आँच से सांद्र गाढ़ हो उठा। सूरदास की यह सृष्टि अद्वितीय
प्रिय है, विश्व साहित्य में ऐसी प्रेमिका नहीं है, नहीं है।
तीन, सूरदास की यशोदा। सूर सागर की तुलना महाभारत से की जा सकती है। महाभारत कहानियों, घटनाओं, व्याख्यानों और उपदेशों का विशाल समुद्र है। ग्रंथकार को किसी भी बात को कहने के लिए कोई जल्दी नहीं है। एक ही बात अगर 10 बार भी कह दी गई तो उसे क्षोभ नहीं होता। उसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि मूल कथा का सूत्र कहाँ छिन्न होता है और फिर कहाँ युक्त होता है। पर इन सारी कहानियों, घटनाओं आदि के कारण महाभारत इतना सजीव काव्य हो गया है कि उसका सामान्य से सामान्य कोटि का पाठक विभिन्न चरित्रों की विशेषताओं को बता सकता है। एक बालक भी एक घटना का आभास पाकर कह सकता है कि इस विषय पर भीम, भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, शकुनी और द्रौपदी आदि के क्या मत होंगे। चरित्रों की इस विभिन्न स्थली का एक भी चरित्र दूसरे के साथ एक रूप नहीं दिखता, कोइंसिड नहीं करता। ठीक यही बात सागर के संबंध में कही जा सकती है। सूरदास को समय की कमी नहीं है, वे एक ही जगह 10 पद गा सकते हैं। उन्हें कुछ भी त्वरा नहीं और कुछ भी हिचक नहीं। फल यह हुआ है कि उनकी राधा, उनके कृष्ण, उनकी यशोदा, उनकी नंद और उनके उद्धव अपना अपना विचित्र व्यक्तित्व रखते हैं। गोपियों के अलग अलग नाम लेकर उन्होंने नहीं कहा, पर अगर परिश्रम किया जाए तो सूर सागर के पदों का इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है कि इन गोपियों में 10-20 प्रकृति की मिल सकती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ग्रंथकार ने अपने मन में अलग अलग व्यक्तित्व की गोपियाँ कल्पित की हैं, पर जानबूझकर उनका अलग अलग नाम नहीं दिया। सूर सागर में गोपियों का इतना विस्तृत वर्णन है कि उसे स्त्री चरित्र का काव्य कहे तो अनुचित न होगा। पृष्ठ संख्या 74। उसमें मातृ रूप का अद्भुत पूर्व चित्र उतरा है, प्रेमिका का, कामिनी का, पत्नी का, लड़की का, रानी का, ग्वालिन का और पर स्त्री का इतना सुंदर रूप शायद ही किसी एक काव्य में हुआ हो। कहा जाता है कि सूरदास बाल लीला वर्णन करने में अद्वितीय हैं। मैं कहूँगा सूरदास मातृ हृदय का चित्र खींचने में अपना सानी नहीं रखते। कहा गया है कि सूरदास प्रेम के स्वरूप के अपूर्व पारखी थे। मैं कहता हूँ प्रेमिका के हृदय सौंदर्य का तटस्थ भाव से चित्रण करने में सूरदास के साथ संसार के कुछ ही कवि की गणना हो सकती है। सूर सागर के दो चित्र संसार के साहित्य में बेजोड़ हैं, यशोदा और राधिका। यशोदा के वात्सल्य में वह सब कुछ है जो माता शब्द को इतना महिमाशाली बनाए हैं। राधिका के चित्र में प्रेम का अर्थ से इति तक सर्वस्व निहित है। अभागा है वह मनुष्य जिसने हिंदी समझने की शक्ति रख कर मातृ हृदय के उस स्वर्गीय प्रेम को नहीं देखा। मेरे कुंवर कान बिनु सब कछु वैसे ही धरियो रहे, को उठी प्रात होत लई माखन को कर नेति गहई, सुने भवन जसोदा सुत के गुन गुनी सूल सहे, दीन उठी घर घेरत ही ग्वारनी उरहन को न कहे, जो ब्रज में आनंद हो तो मुनि मनसा हूँ न गहे, सूरदास स्वामी बिनु गोकुल कोड़ी हूँ न लहे, है को ऐसी भांति दिखावई, किंकिनी शब्द चलत धुनी रुनु झुनु ठुमकी ठुमकी गृह आवई, कछुक बिलास बदन की शोभा अरुण कोटि गति पावई, कंचन मुकुट कंठ मुक्तावली मोर पंख छबि छावई, धूसर धूरी अंग अंग लीनई ग्वाल बाल संग लावई, सूरदास प्रभु कहती जसोदा भाग बड़े ते पावई, यद्यपि मन समझावत लोग सूल होत नवनीत देखी मेरे मोहन के मुख जोग, प्रात काल उठी माखन रोटी को बिन मांगे देहे, अब उही मेरे कुवर कान को छिन छिन अंकम लेहे, कहियो पथिक जाई घर आवहु राम कृष्ण दो भैया, सूर श्याम कत होत दुखारी जिनके मोसी मैया, मेरे कान कमल दल लोचन अब की बेर बहुरी फिरी आवहु कहा लगे जिय सोचन, यह लालसा होती जिय मेरे बैठे देखत रह हो, गाई चरावहन कान कुवर सो कबहू भूली न कह हो, करत अन्याव न बर जऊ कबहू अरु माखन की चोरी, अपने जियत नैन भरी देखो हरी हलधर की जोरी, दिवस चारी मिली जाहु सावरे कहियो यही संदेशो, अब की बेर आनी सुख दीजई सूर मिटाए अंदेशो, इत्यादि। पृष्ठ संख्या 75। इन छंदों को चुनकर नहीं लिखा गया है। सूर सागर इस प्रकार के रत्नों से आपाद मस्तक लदा है। यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदय ग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। माता संसार का एक ऐसा पवित्र रहस्य है जिसे कवि के अतिरिक्त और किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं। सूरदास जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम पेलो हृदय को छूने में समर्थ हुए हैं, वहाँ वियोगिनी माता के करुण विगलित हृदय को भी उसी सतर्कता से छू सके हैं। पुत्र वियोगिनी यशोदा वह माता है जो प्रेम की असीम उपलब्धि से परिपूर्ण है। वह प्रेम वियोग के रूप में परिवर्तित होकर कभी पूर्णता के किसी अंश को क्षुण्ण नहीं कर सका है। हमने ऊपर जो कुछ कहा है वह शायद स्पष्ट नहीं हुआ, कुछ उदाहरण देकर उसे स्पष्ट किया जाए। यह संसार ससीम और असीम की लीला भूमि है। हम अनंत प्रवाह में बहते आ रहे हैं युग युगांतर से, कहीं विराम नहीं, कहीं थकान नहीं। कितने प्रेमी हृदयों को हम छोड़ आए हैं, कितने को छोड़ जाएंगे इसकी इतियत्ता नहीं। इस वियोग की विराट धारा का स्रोत वियुक्त प्रेमी के प्रति एकदम उदासीन है। वैष्णव कवियों ने इस सत्य की उपलब्धि की है श्री कृष्ण की लीला में। श्री कृष्ण परिपूर्ण है, अनंत है, उदासीन है। यशोदा और राधिका इस अनंत वियोग रूपी दीर्घ वृत्त के दो नाभि केंद्र हैं। ये शांत हैं, अपूर्ण हैं और आसक्त हैं। वैष्णव मर्मी कवि अत्यंत सहज भाव से इस अपरिपूर्णता की अनुभूति को प्रेम से भरता है। यही वैष्णव प्रेम का महात्म्य है। सफल मर्मी कलाकार वह है जिसने अपरिपूर्ण को प्रेम के द्वारा परिपूर्ण किया है और पूर्ण को उसके अभाव का अनुभवी। यशोदा का चित्रण करते समय सूरदास ने इस सहज परिपूर्णता को कभी क्षुण्ण नहीं होने दिया। यशोदा श्री कृष्ण की उपस्थिति में परिपूर्ण प्रेममयी है। वे उन माताओं में नहीं है जो संतान की मंगल आशा से सदा अश्रुपूर्ण आंखों से आकाश की ओर ताका करती हैं। हे देवगण, जिसे पाया है उसे कहीं खो न दूं। यह प्रेमपूर्ण चित्र ठीक राधिका के समान ही उतरा है। सूरदास की राधिका चंडीदास की राधिका की भांति मिलन में वियोग की कल्पना से कहीं भी सिहर नहीं उठती। यशोदा भी ठीक उसी तरह स्नेह पात्र की उपस्थिति में उसकी वृथा अमंगल आशंका से उद्विग्न नहीं हो उठती। सूरदास की राधिका और यशोदा दोनों ही मिलन के साथ 16 आना प्रेयसी और 16 आना माता हैं। पृष्ठ संख्या 76। वियोग के समय दोनों ही 16 आना वियोगिनी, दोनों के प्रेम समुद्र में कहीं भी उफान नहीं आया। जो यशोदा पुत्र की उपस्थिति में कहती है, लाला हौं वारी तेरे मुख पर, कुटिल अलक मोहन मन, विहसनी भ्रिकुटी विकट ललित नैननी पर, दमकती दूत दतुलिया, विहसती मनो सीप घर कियो बारिज पर, लघु लघु सिर लट भूंगर वारी, लटकन लटकी रहियो माथे पर। यह उपमा कापई कही आवई, कछुक कहो संकुचित हौ जिय पर, नवतन चंद्र रेख मधि, राजत सुर गुरु शुक्र उदोत परस्पर, लोचन लोल कपोल ललित अति नासिक को मुखता रद छत पर, सूर कहा नेवछावर करियई अपने लाल ललित लर ऊपर। वही यशोदा उसी लाल की अनुपस्थिति में अत्यंत व्याकुल हो उठती है। यद्यपि मन समुझावत लोग सूल होत नवनीत देखी मेरे मोहन के मुख जोग, प्रात काल उठी माखन रोटी को बिन मांगे देहे, अब उही मेरे कुवर कान को छीन छीन अंकम लेहे, कहियो पथिक जाई घर आवहु राम कृष्ण दो भैया, सूर्य श्याम कत होत दुखारी जिनके मोसी मैया। इन दो पदों में आनंदमयी और वियोगिनी यशोदा के दो चित्र एक ही प्रेम के दो परिणाम हैं। यह वह प्रेम नहीं है जो मिलन को वियोग की और वियोग को मिलन की रागनी से भर देता है, जिस प्रेम में चेतना सदा जागृत रहकर प्रेमी को सचेत करती रहती है, बल्कि यह वह प्रेम है जो प्रेमी को मिलन के आनंद से अज्ञान कर देता है और विरह के ताप से भी अज्ञान कर देता है, जो मिलन को केवल मिलन, ठोस मिलन और विरह को केवल विरह के रूप में देखता है। सूरदास की यशोदा और राधा इसी प्रेम की उपासिका हैं। सूर सागर के पदों में जो कहीं कहीं मिलन में व्याकुलता का आभास मिल जाया करता है, इसे हम अगले प्रकरण में स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। वह भक्त कवि की अपनी आत्मा की व्याकुलता है, राधिका या यशोदा में उसका आरोप अनजान में हो गया है। 4 छबेले मुरली नेकौ बजाओ। समस्त सूर सागर में सूरदास की व्याकुलता आत्मा नाना मिसों से कातर चित्कार कर उठती है, छबीले मुरली नेकौ बजाओ। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ दिन रात मुरली बजाया करते हैं, पर उनकी प्यास नहीं बुझती। श्री कृष्ण उनके अति निकट रहते हैं, मुरली की आवाज उनके लिए अपरिचित नहीं है, तथापि वे व्याकुल भाव से कह उठते हैं, मानो इस व्याकुलता के पीछे अंध कवि की व्याकुल आत्मा पुकार उठती हो। पृष्ठ संख्या 77। छबीले मुरली नेकौ बजाऊ, बलि बलि जात सखा यह कही कही अधर सुधा रस पियाऊ, दुर्लभ जन्म लहब वृंदावन दुर्लभ प्रेम तरंग, ना जानिए बहुरी कब हवे हे श्याम तिहारो संग। इस गान में ग्वाल बालों को उपलक्षण भर करके सूरदास की आत्मा अपनी व्याकुलता प्रकट कर रही है। पनघट पर सखियों ने मुरली के विषय में जो कुछ कहा है, वह चाहे निंदा हो या स्तुति, ईर्ष्या हो या प्रेम, सर्वत्र उसके पीछे एक अव्यक्त ध्वनि निकला करती कहती है, छबीले मुरली नीकौ बजाऊं। मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या वैश्व साहित्य की एक अति परिचित घटना है, पर सूरदास ने इस ईर्ष्या के पीछे अपना व्याकुल व्यक्तित्व इस प्रकार बैठा दिया है जो बार बार निकल पड़ता है। सखियां जब कहती हैं, बांसुरी विधि हूँ ते परबीन, कहिए काहे आही को ऐसे कियो जगत आधी, चारी बदन उपदेश विधाता थापि थीर चीर नीति, आठ बदन गर्जति गर्बीली क्यों चली है यह रीति, विपुल विभूति लही चतुरानन एक कमल करी थान, हरि कर कमल जुगल पर बैठी बाढ़ियो यह अभिमान, अधर सुधा पी कुल व्रत टारयो नहीं सिखा नहीं ताग, तदपि सूर्यानंद सुवन कौ याही सौ अनुराग। तो इन सारी बातों के पीछे से एक व्याकुल उत्सुकता चित्कार उठती है, छबीले मुरली नेकौ बजाऊ। राधिका के बतरस में, गोपियों की ताना तानी में, पनघट की छेड़छाड़ में, दान लीला के सवाल जवाब में एक अति झीनी झनकार उठा करती है, छबीले मुरली नेकौ बजाऊ। रास लीला की वह आनंद केली जिसकी तुलना संसार में नहीं है, केवल एक मेरुदंड के चारों ओर चक्कर लगा रही है, छबीले मुरली नेकौ बजाऊ। ब्रजभाषा का कवि तत्रापि सूरदास ठोस रूप का उपासक है, इस रूपावरण के पीछे कहीं भी तुरीय अरूप सत्ता की ओर इशारा नहीं किया गया है, तथापि भक्त कवि की व्याकुलता उसके पीछे किसी न किसी रूप में रह गई है। ईसाई मर्मियों के साथ सूरदास की तुलना करते समय हमने इस बात पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है, इस स्थान पर हम यही कहना चाहते हैं कि अपने समस्त मिलन और वियोग के गानों में सूरदास की व्याकुलता छिपी पड़ी है। राधिका के अति निकटवर्ती श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन में घरेलू आदमी से ऊपर नहीं गए, राधिका के साथ वे सर्वदा समान भूमि पर ही कीड़ा कौतुक में मग्न रहे, परंतु फिर भी भक्त कवि ने इस सामिप्य में एक सुदूर का सुर भर दिया है। यह बात शायद अनजान में हो गई है, पर जो बात अनजान में हो जाती है वह निश्चित रूप से मनुष्य के मस्तिष्क की प्रधान चिंता होती है। पृष्ठ संख्या 78, हजार दबाने पर भी वह नहीं दबती। महाप्रभु वल्लभाचार्य के चेताने के बाद से सूरदास की तंत्री में कहीं भी व्याकुलता फूट नहीं पड़ने पाई, पर प्रेम मुखर कल कल्लोलों से छुट्टी पाते ही सूरदास अनजान में अपनी व्याकुलता को कह जाते हैं। यद्यपि राधिका हरि संग हाव भाव कटाक्ष लोचन करत नाना रंग, हृदय व्याकुल चीर ना ही वदन कमल विलास, त्रिषा में जल नाम सुनी ज्यो अधिक अधिकई प्यास, श्याम रूप अपार इत उत लोभ पट विस्तार, सूर मिली नहीं लहत को दुहुनी बल अधिकार, राधे ही मिलेहु प्रतीति न आवती, यद्यपि नाथ विधु बदन विलोकति, दर्शन कौ सुख पावती, भरी भरी लोचन रूप परम निधि, उर्मे आनी दुरावती, चितवती चकित रहती चित अंतर नैन निमेश न लावती, सपनौ आहि की सत्य इश यह बुधि वितर्क बनावती, कबहुक करती विचार कौन हौ को हरिकई ही अभावती, सूर्य प्रेम की बात अटपटी मन तरंग उपजावती। इन भजनों के पीछे कवि का एक अपना व्यक्तित्व है जो मानो राधिका के मुंह से अपने आप बोल रहा है, मानो वह आधुनिक कवि के कंठ में कंठ मिलाकर कहना चाहता है, आमी चंचल है आमी सुदूरे रे प्यासी, दिन चले याए आमी आन मने, तारी आशा चे था की वातायने, ओगो प्राणे मने आमीए ताहार, परश पावार प्रयासी, आमी सुदूरे रे प्यासी, ओगो सुदूर विपुल सुदूर तुमीये, बाजाओ व्याकुल बांशरी, मोर डाना नाई आछी एक ठाई, से कथा ये याई पाशरी। अर्थात अजी मैं चंचल हूँ, मैं सुदूर का प्यासा हूँ, दिन बीत जाता है और मैं अनमने भाव से उसकी आशा में खिड़की पर बैठा रहता हूँ, अजी मैं प्राण और मन से उसी के स्पर्श पाने का प्रयासी हूँ, हे सुदूर हे विपुल सुदूर, तुम तो व्याकुल वंशी बजाया करते हो, मेरे पंख नहीं है, एक जगह पड़ा हुआ हूँ, यह बात तो मैं भूल जाता हूँ। पृष्ठ संख्या 79, सूरदास की आत्मा सचमुच इन गानों के भीतर से रह रहकर अत्यंत व्याकुल भाव से कह उठती है, छबीले मुरली नेकौ बजाऊं। सूर सागर की आनंद केली का केंद्र स्थल है रास लीला। गोपियों के पहुंचने पर श्री कृष्ण उन्हें लौट जाने का उपदेश करते हैं, भले यह तुम करी ना ही अजहू घर फिरी जाहू, सूर प्रभु क्यों निडरी आई नहीं तुम्हारे नाहू। यह सुनते ही गोपियों के बहाने सारा सूर सागर अत्यंत कातर व्याकुलता से चिल्ला उठता है, छबीले मुरली नेकौ बजाऊं। बड़ा ही मर्म स्पर्शी है यह दृश्य, जहाँ गोपियों का रुदन जल नदी संबही चलियउ ऊरज बीच मनोगिरी खोरी सरिता पनारी। गोपियों की विवश व्याकुलता का अनुमान करना भी कठिन है। हाय सूर सैन देई सरबस लुटयो मुरली लई 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 नाम बुलावत, एक ही प्रार्थना है। प्रीति वचन नौका करी राखव अंकम भरी बैठावहू, सूर्य श्याम तुम बिन गति नाही युवतिन पार लगावहू। और इसके बाद की सारी प्रार्थनाओं को एक वाक्य में प्रतिफलित किया जा सकता है, छबीले मुरली नेकव बजाऊं। अगर हमसे कोई पूछे कि सूर सागर का केंद्रीय वक्तव्य क्या है तो बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्ला उठेंगे छबीले मुरली नेकव बजाऊं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि यह व्याकुल सूर इतने रंगों में अनुरंजित होकर जो सूर सागर में आया है वह आकस्मिक नहीं है, उसमें कवि का आवरण परिधान करके बैठा हुआ है। भक्त गायक अपनी मर्म वेदना गा रहा है, दुर्लभ जन्म दुर्लभ वृंदावन दुर्लभ प्रेम तरंग, ना जानिए बहुरी कब हवे हे श्याम तिहारो संग, अतएव छबीले मुरली नेकव बजाऊं। 5 सूरदास और नंददास की गोपियां। वैष्णव कवियों विशेषकर भक्तों की कविता की आलोचना करना आंख से खिलवाड़ करना है। सूरदास या नंददास कविता नहीं करते थे, भजन गाते थे। पृष्ठ संख्या 80। वे साहित्य की सृष्टि करने के उद्देश्य से नहीं गाते थे, गाते थे साधना के लिए। साधना भी ब्रज तत्व की, जहाँ लौकिक रस बिल्कुल विपर्यस्त हो जाते हैं। ब्रज तत्व में जो काम है वही प्रेम है, ब्रैकेट में भक्ति प्रकरण देखिए ब्रैकेट बंद। जो प्रेम है वही राग है, जो राग है वही भक्ति है। इस ब्रज तत्व की आलोचना करने का अधिकार सबको नहीं है। हम लोग दुनियावी प्रेम और काम के समुद्र में आजीवन निमज्जित रहते हैं और मौके बेमौके इन वैष्णव कवियों की प्रेम लीला का गान सुनकर उन पर बरस पड़ते हैं। आज इस 20वीं शताब्दी के विश्लेष युग में जबकि कोई भी साधना स्थायी रूप से अग्रसर नहीं हो पाती, ब्रैकेट में परिशिष्ट देखिए ब्रैकेट बंद, हमने काम और प्रेम की परिभाषा की है और बड़े बड़े तत्व खोज निकाले हैं। ब्रज तत्व का मर्मज्ञ भक्त विश्वास करता है कि वहाँ काम और प्रेम दो चीज नहीं है। इस युग के साहित्य सूर इसे सच समझे या झूठ, वह यही समझकर भजन करता है। उसी प्रेम तत्व की आलोचना में प्रवृत्त होते समय हम गोलोकवासी वैष्णव भक्त से प्रार्थना करते हैं कि हे वैष्णव कवि, तुम्हारी प्रेम लीला का वास्तविक रहस्य न समझते हुए भी इतना हम जानते हैं कि वह हमारी काम और प्रेम की कल्पनाओं से परे है। उस मूल प्रेम तत्व के संबंध में हम एकदम मौन रहेंगे, देखेंगे केवल उस प्रेम की दिशा, वह किधर से आया था किधर गया था। यह प्रश्न हमारी आलोचना की अपेक्षा नहीं रखता, वह निश्चय ही राधिका रानी और ब्रजराज की ओर चला गया था। सूरदास और नंददास दोनों ही एक संप्रदाय के साधक थे, दोनों ने ही भक्तजनों के हृदय पर आसन पाया है और दोनों का समय करीब करीब एक ही है। इन दोनों महात्माओं ने भ्रमर गीत तथा उद्धव और गोपियों के संवाद लिखे हैं। इन संवादों में ज्ञान की अपेक्षा प्रेम का मार्ग सहज और महान बताया गया है। योग और निर्गुण उपासना की जगह सगुण उपासना की महिमा प्रतिष्ठित की गई है। दोनों संवादों के पात्र कथा विषय और प्रणाली एक ही है, दोनों संवादों का उद्देश्य भी एक ही है। अतः यह देखना शायद अनुचित न होगा कि इन संवादों के वर्णित प्रेम मार्गों में कुछ विशेषता है या नहीं। नंददास की गोपियां सूरदास की गोपियों से अधिक तार्किक हैं। निर्गुण उपासना का प्रसंग हो या योग का, वे उद्धव की युक्तियों का इस खूबी से खंडन कर देती हैं कि सिखाए पढ़ाए उद्धव निरुपाय होकर दूसरा विषय छेड़ देते हैं। उद्धव कहते हैं, जो उनके गुण होए वेद क्यों नेत बखान, निर्गुण सगुण आत्मा रची ऊपर सुख सानई, वेद पुराणनि खोजी कई पायो किनहु न एक, गुण ही के जो हो ही गुण कहो आकाश की ही टेक। सुनो ब्रज नागरी। पृष्ठ संख्या 81। गोपियां जवाब देती हैं, जो उनके गुण ना ही और गुण भय कहाँ ते, बीज बिना तरु जमई मोही तुम कहो कहाँ ते, वागुन की पट छा हरी माया दर्पण बीज, गुण ते गुण न्यारे भय अमल वारी जल कीच, सखा सुनो श्याम के। उद्धव रास्ता न देखकर दूसरा तर्क उठाते हैं, माया के गुण और हरि के गुण जानो, उन गुण को इन माही आनी काहे को सानो, जाके गुण अर रूप को जान न पायो भेद, ताते निर्गुण रूप को बदत उपनिषद वेद। उद्धव पहले कह गए थे कि उनके तो गुण ही नहीं है, अगर होते तो वेद नेति नेति क्यों कहते। अब कहते हैं कि हरि के गुण कुछ और हैं माया के, और माया के गुणों को हरि में आरोप करना करना अच्छा नहीं। असल में हरि के गुण रूप का भेद समझकर ही वेद उपनिषद उन्हें निर्गुण कहते हैं। गोपियों ने इसका भी जवाब दिया, वेदहू हरि के रूप श्वास मुख से जो निसरई, कर्म क्रिया आसक्त सबई पिछली सुधी बिसरई, कर्म मध्य ढूंढे सबई किनहु न पायो देख, कर्म रहित हो पाइये ताते प्रेम विशेख, सखा सुनो श्याम के। इस प्रकार तर्क में नंददास की गोपियां सदा उद्धव से बीस रहती हैं, परंतु सूरदास की गोपियां तर्क जानती ही नहीं, वे स्वीकार कर लेती हैं कि योग और निर्गुण मार्ग बहुत अच्छा है, पर अबला ग्वालिने योग कैसे करेंगी। नंद नंदन के साथ जिन्होंने प्रत्यक्ष केली की है उन्हें निर्गुण मानने की जरूरत क्या है, तर्क वे बिल्कुल नहीं जानती। उद्धव जी, हम ही न जोग सीखे जे ही उपदेश मिलई, हरि हम कौ सो व्रत नेम बतये, मुक्ति रहो घर बैठी आप नौ निर्गुण सुनी दुख पे, जिही सीर केस कुसुम भरी बूंदे कैसे भस्म चढ़े, जानी जानी सब मगन भये हैं आपनु आपु लखे, सूरदास प्रभु सुनहु नौ विधि बहुरी की इही ब्रज ए। उधव मन न भई दस बीस, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को औराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केसो बिनु ज्यों देही बिन सीस। पृष्ठ संख्या 82। आशा लागी रहत तनु स्वासा जीवही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, राखो सब यह जोग अटपटो उधो पाई परौ, कहां रस रीति कहां तन शोधन सुनी सुनी लाज मरऊ। सूरदास की गोपियों का एक ही तर्क है, उधो योग की बात ना सिखाओ, कुछ ऐसी बात बताओ जिससे प्यारे मिले। इस सादगी के सामने बड़े बड़े तर्क चूड़ा मड़ी मौन हो जा सकते हैं। उद्धव तो फिर भी भक्त थे, स्वयं प्रेम की महिमा के कायल थे। उद्धव जहाँ कुछ ज्ञान कथा शुरू करते हैं वहीं सरल प्रेम का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है कि जो कुछ कहा वह न जाने कहाँ बह जाता है, नाना रूप में एक ही बात सुनाई पड़ती है, योग और निर्गुण की बात मत कहो, श्याम से मिला दो। नंददास के उद्धव को तर्क परास्त होना पड़ता है, सूरदास के उद्धव अपना तर्क समझा ही नहीं पाते, उन्हें विजयी होने का मौका ही नहीं मिलता। नंददास की गोपियां युक्ति से प्रेम की महिमा स्थापित करती हैं, सूरदास की गोपियों के पास विरह का ऐसा खजाना है कि उसी को बांटने से फुर्सत नहीं मिलती। युक्ति और तर्क कौन करे। इस प्रसंग में कुब्जा के प्रति उपालम्ब भी ध्यान देने योग्य है। नंददास की गोपियां कुब्जा की खूब खबर लेती हैं, सूरदास की गोपियां भी निःश्वास फेंक कर एक बार कुब्जा का नाम लेती हैं और भाग्य को दोष देकर रह जाती हैं। नंददास की गोपियां कुब्जा का नाम स्मरण करते ही आपे से बाहर हो जाती हैं। को कहे रे मधुप तुम्हें लज्जा नहीं आवई, सखा तुम्हारो श्याम कुबरी नाथ कहावई, यह नीची पदवी हुती गोपी नाथ कहाए, अब जदुकुल पावन भयो दासी जूठन खाए। भरत कह बोल के को कहे हो मधुप श्याम जोगी तुम चेला, कुब्जा तीरथ जाय कियो इंद्रिन को मेला, मधुबन सुधी बिसराई कई आये गोकुल माही, इहां सबे प्रेमी बसे तुम्हरो गाहक नाही, पधारो रावरे। को कहे रे मधु होए तुम सो जो संगी, क्यों न होए तन श्याम सकल बातन चौरंगी। पृष्ठ संख्या 83। गोकुल में जोरी को पाई नाही तुम्हारी, मदन त्रिभंगी आपु ही करी त्रिभंगी नारी, रूप गुण सील को और इतना कह चुकने के बाद ता पाछे एक बार ही रुदित सकल ब्रज नारी, हा करुणामय नाथ हा केशव कृष्ण मुरारी, फाटी हियरौ चल्यौ। नंददास की ये गोपियां दुनिया को जानती हैं, वे प्रत्येक बात की छानबीन कर सकती हैं, कितनी करुणा जनक कल्पना है यह। प्रेम मूर्ति गोपियों को छोड़कर करुणा निधान भगवान कुब्जा से प्रेम करने लगे, यह सोचना भी भयानक है। फाटी हियरौ चल्यौ, उद्धव ने ठीक ही समझा, ये सब प्रेमासक्त है, कुल लज्जा करी लोप धन्य एक गोपिका। परंतु सूरदास की गोपियां इतना सोच नहीं सकती, अपनी व्यथा के अपार समुद्र में आप ही डूबती उतराती ये ब्रज बालाएं दूर तक की बात सोचने की फुर्सत नहीं पाती। कहीं कुब्जा याद आ गई तो उसका नाम लेकर एक बार लंबी सांस छोड़कर फिर अपना ही चरखा शुरू कर दिया। हाय उधो, नंद नंदन को भूलने की बात कह रहे हो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। उधव कहां हमारी चूक, वे गुण ये अवगुण सुनी हरि के, हृदय उठत है हुक। बिनही काज छाड़ी गए मधुबन, हम घटी कहाँ करी। तन मन धन आत्मा निवेदन, सो न चितही धरी। रीझे जाई सुंदरी कुबजही, इही दुख आवत हासी। जदपि कूर कुरुप कुद रसन, तदपि हम ब्रजबासी। एते ऊपर प्राण रहत घट, कहो कान सौ कहिए। पूरब कर्म लिखे विधि अक्षर, सूर सबे सो सहिए। मधुब बिरानी लोग बटाओ, दिन दस रहे आपने स्वार्थ। तजी फिरी मिले न काओ, प्रीतम हरी हमको सिधि पठाई। आयो जोग अगाओ, हम कौ जोग भोग कुबी जा कौ। उही कुल यहे सुभाओ, जान्यो प्रेम नंद नंदन को। कीजे कौन उपाऊ, सूर श्याम कौ सर्बस दीनौ। प्राण रहो के जाओ, हम ब्रजबाल गोपाल उपासी। ब्रह्म ज्ञान सुनी आवे हास, ब्रज में जोग कथा लई आयो। मन कुबिजा कुब रही दुरायो। इस प्रकार दोनों महात्माओं के प्रेम में एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। नंददास का प्रेम मस्तिष्क की ओर से आता है, सूरदास का हृदय की ओर से। नंददास युक्ति और तर्क को शुरू में ही नहीं भूल जाते। सूरदास के यहाँ भूलने न भूलने का सवाल ही नहीं है, वहाँ युक्ति और तर्क है ही नहीं। नंददास की गोपियाँ प्रेम में बावरी है, तर्क में नहीं, उपालंभ करने में भी नहीं, परंतु सूरदास की गोपियाँ सब तरह से भोरी हैं।